विग्रह।
तुनंद उसे कहते हैं जिसके पास 900,000 गौवें हों, है ना। तो नंद एक उपाधि है, तो कृष्ण के पिता नंद नहीं है, कृष्ण के पिता नंदराज है। नंदराज उसे कहते हैं जिसके पास 1 करोड़ गौवें हों। तो नंदराज एक ही थे जो कृष्ण के पिता थे, 9 नंद थे और 9 उपनंद थे। उपनंद उसे कहते हैं जिसके पास 5 लाख गौवें हों, जिसके पास 5 लाख गौवें हों उसे उपनंद कहते हैं, है ना। तो 9 नंद और 9 उपनंद और 6 ब्रजभानु थे। ब्रजभानु उसे कहते हैं जिसके पास 10 लाख गौवें हों। तो 6 ब्रजभानु थे। राधारानी की पिता ब्रजभानु नहीं है, राधारानी की पिता है ब्रजभानुवर। ब्रजभानुवर उसे कहते हैं जिसके पास 50 लाख गौवें हों। तो ब्रजभानुवर एक ही थे जो राधारानी के पिता थे। तो ये सब 9 नंद आए नंदराज के घर में और 9 उपनंद आए और 6 ब्रजभानु आए। वे सभी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए। नंदा नवोपनंदाच तथासन ब्रजभान महाम नानोपायन संयुक्ता सर्वे तेपी समाययुः। ये सब कैसे हैं, सिर पर पगड़ी धारण किए और उस पगड़ी के ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के जामे पहने हैं, केसों में मोर पंख और गुंजा बांधे हुए हैं और वनमाला से विभूषित हैं। कौन ये सभी? नंद उपनंद ब्रजभानु ये सभी। उसनी सो परिमालाड्या पीत कंचु के शोभिता बरह गुंजा बद्ध केशा वनमाला विभूषण। हाथों में बंसी लिए हैं, बैत की छड़ी लिए हैं, सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए हुए और कमर में मोर पंख बांधे जितने भी गोपाल हैं वो भी आ पहुंचे। बंसी धरा वेत्र हस्ता सुपत्र तिलकार्चिता बद्ध वर्ण परिकरा गोपा से भी समाययु। वे नाचते और गाते और वस्त्र हिलाते हैं। कौन? गोप लोग और मूछ वाले तरुण और बिना मूछ के बालक भी भांति भांति ये भेंट लेकर वहां पर पहुंचे। कहां पर? नंद भवन में। नृत्यंता परिगायंतो दुनवंतो वसनानि च नानोपायन संयुक्ता अस्मश्रुलास वहां परे। बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए अपने साथ मक्खन दूध दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। हे अंगवीन दुग्धानाम दद्याज्ञानाम बलीन बहु नीत्वा वृद्धा यस्ति हस्ता नंद मंदिर माययुः। वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्र जन्मोत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेम से बेहमल होकर नेत्रों से आनंद के आंसू बहा रहे थे। कौन? बूढ़े लोग एक दूसरे को नंद के घर में पुत्र जन्मोत्सव का समाचार सुनाते हैं और प्रेम के आंसू बहाते हैं। पुत्रोत्सवम ब्रजेशस्य कथयन्ता परस्परम प्रेम विह्वल भावैश्वर आनंदाश्रु समाकुलम। पुत्रोत्सव होने पर श्री नंदराज का आनंद चरम सीमा को पहुंच गया। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए समस्त गोपों का तिलक के द्वारा विधिवत सत्कार किया। नंदिनी जी ने अपने हाथ से तिलक लगाया सब गोपों के माथे पर। जाते पुत्रोत्सव नंदा स्वानंदा स्वाकुलेक्षण पूजया मास तान सर्वां तिलकांजैर विधानतः। अब गोप नंद महाराज से क्या बात करते हैं सुनिए। कहते हैं हे ब्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ जो पुत्रोत्सव हुआ है ये संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। कलंक क्या है? जिसके घर में पुत्र ना हो तो ये कलंक है। इस कलंक को मिटाने के लिए आपके घर में पुत्र ने जन्म लिया है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है? हे ब्रजेश्वर, हे नंद, जाता पुत्रोत्सव तथा आन पत्ते शिक्षितो लभता कि मंगलम परम। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको ये दिन दिखलाया है। हम लोग श्री नंद नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। దైవేన దర్శితం చేదం దినం వో బహుభిర్దిన కృతకృత్యాశ్చ భూతాత్మో దృష్ట్వా శ్రీ నంద నందనం. అప్ గోప్ లోక్ క్యా కహతే హై నంద సే, హమ్ కి ఉన్హే క్యా ఆనంద హై, కిస్ బాత్ కా ఆనంద హై, జబ్ ఆప్ దూర్ సే ఆకర్ పుత్ర కో గోద్ మే లేకర్ మోద్ పూర్వక్ లాడ్ లడాతే హువే హే మోహన్ కహకర్ పుకారేంగే, ఉస్ సమయ హమే బడా సుఖ మిలేగా. హమారా సుఖ క్యా హై కి ఆప్ దూర్ సే అప్నే పుత్ర కో గోద్ మే లేకర్ కి హమారే పాస్ ఆఓగే ఔర్ మోహన్ మోహన్ కహోగే తో హమే బడా సుఖ మిలేగా ఇస్ బాత్ కా. దైవేన హే మోహనేతి దూరాత్మ అంకం నీత్వాగదిష్యసి యదా లాలన భావేన భవితాన సదా సుఖం. అబ్ నంద క్యా కహతే హై దేఖియే, నంద మహారాజ్ కితనే వినమ్ర హై, కహతే హై హే బంధువో, ఆప్ లోగో కే ఆశీర్వాద్ ఔర్ పుణ్య సే ఆజ్ యే ఆనందదాయక శుభ దివస్ ప్రాప్త్ హువా హై. దేఖా క్యా కహతే హై, ఆప్కే పుణ్య సే ఔర్ ఆప్కే ఆశీర్వాద్ సే యే శుభ దివస్ ఆయా హై. నంద జీ కితనే వినమ్ర హై దేఖియే, మే తో బ్రజవాసీ గోప గోపియో కా ఆజ్ఞా పాలక సేవక హూ. దేఖో రాజా, బ్రజ కే రాజా క్యా కహతే హై కి మే ఆజ్ఞా పాలక సేవక హూ, కిస్కా, బ్రజవాసీ గోప ఔర్ గోపియో కా సేవక హూ. భవతాం ఆశిషా పుణ్యా జాతం సౌఖ్యం ఇదం శుభం ఆజ్ఞావర్తి హం గోపా గోపానాం బ్రజవాసీనాం. तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, श्री नंद राय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा नहीं रही. उनके हृदय उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए. श्री नंद राज सुत संभव मनभुतम चाम श्रुत्वा विसृंज गृह कर्म तदैव गोप्याम तूर्णम ययो सबलयो ब्रजराज गेहान ఉద్యత్ ప్రమోద పరిపూరిత హిన్ మనోంగాం. నీ ఘర్ కే సారే కామ కాజ తత్కాల్ ఛోడ్కర్ భేంట్ సామగ్రి లియే తురంత బ్రజరాజ్ కే భవన్ మే జా పహుంచి. అప్నే ఘర్ సే నంద మందిర్ తక్ ఇధర్ ఉధర్ బడీ ఉతావనీ కే సాథ్ ఆతీ జాతీ సబ్ గోపియాం రాస్తే కీ భూమి పర్ మోతీ లుటాతీ హుయీ చల్తీ థీ. శీఘ్రతా పూర్వక ఆనే జానే సే ఉన్కే వస్త్ర ఆభూషణ్ ఔర్ కేసో కే బంధన్ ఢీలే పడ్ గయే. उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी. आनंद मंदिर पुरा सुगृहान ब्रजंत्या सर्वा इत सत उतन स्वर माम ब्रजंत्या यानस्लसन बसन भूषण के सबंदा रेजुर नरेंद्र पति भू परी मुक्त मुक्ता. झनकारते हुए नूपुर नए बाजूबंद सुनहरे लहंगे मंजीर हार మణిమయ కుండల్ కర్ధని కంఠ సూత్ర హాథో కే కంగన్ ఔర్ భాల్ దేశ మే లగీ హుయీ బేందియో కీ నయీ నయీ ఛటాఓ సే ఉన్కీ ఛవి దేఖ్తే హీ బందీ థీ. ఝంకార నూపుర నవాంగద దేహ హే మచీర మంజీర హార మణి కుండల మేఖలా భీ శ్రీ కంఠ సూత్ర భుజ కంకళ బిందు కాభీ పూర్ణేందు మండల నవంద్యుతి విరేజు. వి సబ్ కి సబ్ గోపియాం క్యా కర్తీ హై, రాయి నూన్ ఔర్ హల్దీ కే విశేష చూర్ణ గేహూ కా ఆటా పీలీ సర్సో ఔర్ జౌ హాత్ ఆది హాథో మే లేకర్ బడే లాన్ సే లాలా కే ముఖ పర్ ఉతారతీ హై ఔర్ ఆశీర్వాద్ దేతీ హై. నజర్ నా లగే ఇస్లియే రాయి నూన్ చెహరే పర్ ఉతారతీ హై గోపియాం ఆశీర్వాద్ దేతీ హై. యే సబ్ కర్కే ఉన్హోనే యశోదా జీ సే కహా. శ్రీ రాజ కా లవణ రాత్రి విశేష చూర్ణయన గోధూమ సర్వ యమ యే కర లాల నేశం ఉత్తార్య బాలక మోఖవ ముఖో పరిచాసి సస్తా సర్వాద దుర్నిభజగుర్ జగదుర్ యశోదాం. అబ్ యశోదా సే క్యా కహతే హై గోపియాం, హే యశోదా జీ, బహుత్ ఉత్తమ్, బహుత్ అచ్చా హువా, అహో భాగ్య, ఆజ్ పరమ సౌభాగ్య కా దిన హై, ఆప్ ధన్య హై ఔర్ ఆప్కీ కోఖ్ ధన్య హై జిస్నే ఏసే బాలక్ కో జన్మ దియా హై. సాధు సాధు యశోదేతి దిశ్యా దిశ్యా బ్రజేశ్వరీ ధన్యా ధన్యా పరాకుక్షిర్ యయాయం జనితః సుతః. दीर्घ काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है इसके ओठों पर, बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिए। इच्छा युक्तम कृतम तेव दैवे न बहु काल तम रक्षवालम पद्म नेत्रम सुस्मितम श्याम सुंदरम। अब यशोदा जी क्या कहती हैं सुनिए। माता यशोदा कितनी विनम्र है, नंद यशोदा कितने विनम्र हैं जो कृष्ण के माता पिता बने हैं, सोचिए। माता यशोदा कैसे बात करती हैं उन गोपियों से, कहती हैं बहन आज आप सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में ये सुख आया है। माता यशोदा भी ऐसे ही हैं, ये आनंद उत्सव प्राप्त हुआ है, मेरे ऊपर आपकी सदा बड़ी दया रही है, इसके बाद आप सबको भी देव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, ये मेरी मंगल कामना है। भवदीय दया शिविर जातम सौख्यम परम चमे भवती नाम परम दृष्ट्या भूयान अतः परम। बहन रोहिणी, अब माता यशोदा रोहिणी से कहती हैं, बहन रोहिणी तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य बड़े अच्छे ढंग से करते हो, अपने घर आई हुई ये ब्रजवासिनी गोपियां बड़े उत्तम कुल की हैं, तुम इनका पूजन करो, स्वागत सत्कार करो। कौन कहता है? माता यशोदा रोहिणी से कहती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इन सब की मनोवांछा पूर्ण करो, जितना चाहो उतना धन दो इनको, अपनी इच्छा के अनुसार कोई कमी नहीं धन की। हे रोहिणी महाबोधे पूजनम तो ब्रजो कसाम आगता नाम सत्कुला नाम यथेष्टम हितम कुरु। अब रोहिणी भी राजा की बेटी थी, राजा की कन्या पर दान कितना देंगी, वो उनके हाथ खुल गए, स्वभाव से ही उदार दानशील थी, उस पर यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दी, फिर क्या उन्होंने उदारचित होकर दान देना आरंभ किया। रोहिणी राज कन्या तत्करो दानशीलिनो तत्रापि नोदिता दाने तावती मामन। उन्होंने उनकी अंग कांति गौर वर्ण की थी, किसकी? रोहिणी की। शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे, वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। रोहिणी की साक्षात लक्ष्मी की भांति इधर उधर घूम रही हैं यशोदा के आंगन में और ब्रजांगनाओं का सत्कार करती हैं। गौरवर्ण दिव्यवासा रत्नाभरण भूषिता विचरण रोहिणी साक्षात भोजयंती ब्रजो कसा। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में पधारने पर सब ओर मानव वाद्य बजने लगे, बड़े जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। परिपूर्ण तमे साक्षात श्री कृष्ण ब्रज मांगते नरतु नरतुर्य सुन जय ध्वनि रघुन महान। उस समय गोप दही दूध और घी से और गोपांगनाएं ताजे मक्खन के लोनों से एक दूसरे को भिगोने लगे और हर्षोल्लास से गीत गाने लगी। दधी क्षीर गिरतर गोपा गोप्यों हे अंग वैर्णवे श्री चुर हर्षिता तत्र जगुरुश्च परस्परम। नंद भवन के बाहर और भीतर नंद भवन के बाहर और भीतर सब ओर दही की कीच मच गई। देखा कितना दही फेंका है कि दही की कीच हो गई है, उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग फिसल कर गिर पड़ते थे और दूसरे लोग खूब ताली पीट पीट कर हंसते थे। बहिरंता परे जाते सर्वतो दधिकर दमे वृद्धा से स्थूल देहाशा पेतोरहास्यम कृतम परे। वहां जो पौराणिक सूत वंशों से वंशों के प्रशंसक मागध और निर्मल बुद्धि वाले बंदीजन पधारे थे, उन सब को नंद राय जी ने प्रत्येक के लिए एक एक हजार गौएं दान दी। जितने भी लोग आए थे गायक और कथावाचक, एक एक हजार गौवे प्रत्येक को दान की और वस्त्र आभूषण रत्न घोड़े हाथी आदि सब कुछ दान दिया। समस्त बंदियों और मागधों को नंद राय ने बहुत धन दिया, धन राशि की वर्षा कर दी। ब्रज की गली गली और घर घर में लौट रही है क्या, ब्रज की गली गली में और घर घर में लौट रही है क्या, निधि सिद्धि वृद्धि भुक्ति और मुक्ति ये सब लौट रही है। किंतु उन्हें पाने की इच्छा किसी के मन में नहीं है, कृष्ण के प्रेम के अलावा और किसी को कुछ इच्छा नहीं है। मुक्ति सिद्धि भुक्ति सब लौट रही हैं गली गली में, किसी को इच्छा नहीं पाने की। बंदिभ्यो मांग देभ्यश्च सर्वेभ्यो बहुलम धनम पवर्ष धनवन गोपो नंदराजो ब्रजेश्वर निधि सिद्धिश्च वृद्धिश्च भुक्तिर्मुक्तिर् गृह गृह विद्याम विद्याम लुठंती वे सदिच्छा कष्ट चिन्ह ही। उस समय अब कौन आए सुनिए ध्यान से, सनत कुमार सनत कुमार आए, कपिल आए, सुखदेव व्यास देव और हंस आए, दत्तात्रेय आए, पुलस्त्य मुनि आए और मैं नारद भी गया। नारद जी कहते हैं मैं भी गया वहां पर और ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के साथ हम सब लोग गए। नारद जी कहते हैं सनत कुमार कपिल है सुख व्यासादि भी सह हंस दत्त पुलस्त्यान्देर मया ब्रह्मा जगाम। ब्रह्मा जी का वर्ण कैसा है, तपे हुए सोने जैसा ब्रह्मा जी का रंग है, मस्तकों पर मुकुट और कानों में कुंडल जगमगा रहे हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर के संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां आए हैं। हंसारूढ़ो हेम वर्णो मुकुटी कुंडली स्फुरन चतुर्मुखो वेद करता द्योतयन मंडलम दिशां। उनके पीछे कौन है, शंकर जी। ब्रह्मा जी के पीछे शंकर जी हैं। किस पर बैठे हैं, बैल पर, और भूतों से घिरे हुए हैं शंकर जी। उनके पीछे कौन है, सूर्य देवता। सूर्य देवता उनके पीछे हैं, रथ के ऊपर चढ़े हैं, सूर्य देवता रथ पर सवार हैं, और उनके पीछे इंद्र देवता हैं, किस पर, ऐरावत हाथी पर सवार हैं। उनके पीछे वायु देवता हैं, किस पर सवार हैं, खंजरी पक्षी के ऊपर सवार हैं वायु देवता। फिर उनके पीछे हैं यमराज, किसके ऊपर बैठे हैं, भैंसा के ऊपर बैठे हैं। उनके पीछे हैं कुबेर, किसके ऊपर बैठे हैं, पुष्पक विमान, कुबेर का पुष्पक विमान है। फिर चंद्रमा उनके पीछे आए, किस पर बैठे हैं, मृग के ऊपर। फिर अग्नि देवता आए उनके पीछे, किस पर बैठे हैं, बकरे के ऊपर बैठे हैं अग्नि देवता। फिर उनके पीछे आए वरुण देवता, किस पर बैठे हैं, मगरमच्छ के ऊपर बैठे हैं। फिर उनके पीछे हैं कार्तिकेय, किस पर बैठे हैं, मोर के ऊपर। उनके पीछे सरस्वती देवी, किस पर बैठी हैं, हंस पर। फिर लक्ष्मी देवी उनके पीछे हैं, किस पर बैठी हैं, गरुड़ पर। फिर दुर्गा देवी उनके पीछे, किस पर बैठी हैं, सिंह पर। फिर पृथ्वी देवी गोरूप का धारण करके आई हैं, गाय के रूप में। पृथ्वी देवी वो किसी पर नहीं बैठी, वो तो जमीन पर चल रही हैं। पृथ्वी देवी गाय के रूप में आई, नहीं नहीं वो गाय के रूप में आई हैं लेकिन विमान पर बैठी हैं। पृथ्वी देवी विमान पर बैठी हैं गाय के रूप में। ये सब लोग आए वहां पर। फिर 16 मातृकाएं दिव्य कांति वाली पालकी पर बैठकर आई, और षष्ठी देवी आई जो खड्ग चक्र और यष्टि धारण करने वाली हैं, वो भी आई। मंगल देवता आए, किसके ऊपर, बानर के ऊपर चढ़ करके मंगल देवता आए। फिर बुद्ध देवता आए, किस पर? भास नामक पक्षी पर चढ़ करके। फिर बृहस्पति आए किसके ऊपर बैठ करके? बृहस्पति काले मृग के ऊपर बैठ करके बृहस्पति आए। फिर शुक्राचार्य आए किसके ऊपर? गवय नाम का जो पशु होता है गवय के ऊपर चढ़ करके शुक्राचार्य आए। फिर शनि देवता आए किस पर बैठ करके? मगर पर। फिर राहु देवता आए किस पर? ऊंट पर बैठ करके राहु। ये सभी ग्रह आए जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। नंद मंदिर में पधारे, वहां बड़ा कोलाहल मच रहा था। वह नंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था। देवता लोग वहां पहुंचकर क्षण भर रोके और फिर चले गए। देवताओं को जगह ही नहीं मिली वहां आने की, क्योंकि नंद भवन गोपों से इतना भरा था। तो वो आए और आकाश में क्षण भर रोके, क्षण भर मतलब 4 मिनट के लिए रोके और फिर चले गए। बाल रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया। कोलाहल समायुक्तम गोप गोपी गणाकुलम नंद मंदिरम अभ्येत क्षण स्थित्वाम परिपूर्ण तमम साक्षात श्री कृष्णम बाल रूपिणम नत्वा दृष्ट्वा तदा देवा चक्रुस्तस्य स्तुतिं पराम। ब्रह्मा आदि सब देवता ऋषियों सहित वहां श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रेम बिह्वल और हर्ष विभोर होकर अपने अपने धाम को चले गए। देख कृष्णम तदा देवा ब्रह्मा द्यार सुधा मानी यो सर्वे हर्षिता प्रेम बिह्वला। तो ये वर्णन गर्ग संहिता से हमने पढ़ के सुनाया। अब ब्रह्म विवर्त पुराण में भी वर्णन है नंदोत्सव का। इसमें जो कृष्ण कथा है वो सुना रहे हैं कौन? नारायण भगवान, नारायण ऋषि, बद्री नारायण, बद्री धाम में जो नारायण है, बद्री नारायण नर नारायण, वो कथा सुना रहे हैं किसको? नारद जी को। और नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं। नारद जी पूछते हैं नारायण से, गोकुल में हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने गृह को प्रस्थान किया तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया? नारद जी कहते हैं कि बताइए कैसे नंद जी ने पुत्रोत्सव मनाया और श्री हरि ने वहां रहकर क्या किया। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा जी ने कौन तपस्या की थी? कौन पूछ रहा है ये सब बातें? नारद जी। किससे पूछ रहे हैं? नारायण ऋषि से। हाँ, श्री हरि का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि चरित्रमय काव्य पद पद पर नूतन प्रतीत होता है। तो भगवान नारायण जो है ना बताते हैं नारद जी को कि सुनो, मैं तुमसे यशोदानंद के तप का वर्णन करता हूँ जिसके कारण उन्होंने श्री हरि का मुंह देखा था। यशोदानंद वसुओं में श्रेष्ठ हैं, तपोधन द्रोण नंद नाम से धरातल पर अवतीर्ण हुए हैं। 8 वसुओं में द्रोण नाम के वसु हैं ये। कौन? नंद जी। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी वे सती साध्वी यशोदा हुई हैं, ठीक है ना। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या का उद्देश्य था क्या? भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, समझे। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को तैयार हुए। 10,000 साल तक तपस्या की और कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, तो क्या करते हैं? अग्निकुंड तैयार किया, उसमें दोनों उसमें कूदना चाहते थे अग्निकुंड में। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण होकर गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के भी ध्यान के द्वारा उन्हें बस में करना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी बंदनी है। आकाशवाणी हुई, ये सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे मैंने कहा। इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा। अब तुम्हें जो अभिष्ट है वो नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग सुनो। नंद पुत्रोत्सव, नंदोत्सव, ये नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग सुनो। ये प्रसंग सुखदायक है, ये प्रसंग सुखदायक है, मोक्षदायक है और जन्म मृत्यु और जरावस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। ये श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र, वैष्णवों का जीवन है, ये समस्त अशुभों का विनाशक और हरि के दास भाव को देने वाला है। श्री हरि के दास भाव को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर हर्ष पूर्वक अपने घर को लौट आए। ये प्रसंग पहले कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमय लीला प्रकट हुई उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जयातिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूतकागार में नंद और यशोदा ने देखा। अब नंद यशोदा ने क्या देखा? उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। क्या देखा? उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है, उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है। उसके शरीर से वह नग्न बालक, नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि घर के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी, ऊपर छत में देख रहा है बालक। जमीन में पड़ा हुआ क्या देख रहा है? छत को देख रहा है, नंद महाराज के घर की छत को देख रहा है। उसका मुख शरद काल के पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नीले कमल की शोभा को मात कर रहे हैं। वो कभी रोता, बालक क्या करता है, कभी रोता है और कभी हंसता है। कभी रोता था और कभी हंसने लगता था। उसके स्त्री अंगों में धूल के कण लगे हुए थे, शरीर पर धूल लगी हुई है। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और दोनों चरण कमल प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। वो दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। धाय ने ठंडे जल से बालक को नहलाया, धाय, और उसकी नाल काट दी। अब देखो नाल कैसे काटी है? जब वसुदेव जी लेके आए तो फिर नाल कैसे काट दी? नाल काटी। अब कैसे काटी नाल है? तो ये तो वैसे ही है जैसे कि कृष्ण ने अपने प्रभाव से जब वसुदेव जी कारागार से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने आप ताले खुल गए और दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, उनके हाथ की बेड़ियां, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, अपने आप खुल गई, है ना। तो जब कृष्ण वहां यशोदा के घर में आए तो अपने नाल जोड़ दी यशोदा के पेट से, तो उसमें क्या आश्चर्य है? क्यों? वसुदेव जी जब वापस आए कृष्ण को छोड़ करके तो हथकड़ियां बेड़ियां फिर ज्यों की त्यों उनके लग गई और उनके ताले अपने आप लग गए, सांकल लग गई दरवाजे की, अपने आप सब लग गए। जब ऐसा चमत्कार होता है कृष्ण के प्रभाव से तो इसमें क्या आश्चर्य है कि माता यशोदा के पेट से अपने पेट की नाल भगवान कृष्ण ने जोड़ दी। अब नाल काटी, तो नाल काटी उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। व्रत की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आई। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नंदनंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई उन्हें अपनी गोद में ले लेती थी। उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गईं। वो गई ही नहीं, रात में वहीं रह गई। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की, फिर प्रसन्न से तो वहाँ परंपरागत विधि का पालन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए और बंदी जनों को धन दान किया। इसके बाद नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया, उत्तम रत्न मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए, तिलों के 7 पहाड़ दान किए, सुवर्ण के 100 ढेर दान किए, सोने के 100 ढेर दान किए, चांदी धान की पर्वत, धाने के पर्वत दान किए, वस्त्र 1000 मनोरम गौएं दान की, दही दूध शक्कर माखन घी मधु मिठाई लड्डू स्वादिष्ट मोदक सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि दान की, वायु के समान वेगशाली घोड़े दान किए, पान और तेल इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूत कागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया, मंत्र जानने वाले ब्राह्मणों और बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगाया रक्षा के लिए। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ करवाया, एकमात्र मंगलमय हरि नाम कीर्तन कराया और देवताओं की पूजा करवाई। युवती और बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ ले मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंद राय जी ने उनको भी नाना प्रकार के धन और रत्न दिए। रत्नमय अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आई। उन्होंने बहुत से वस्त्र चांदी और 1000 गौएं सादर अर्पित की। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ जिनकी वाणी सिद्ध थी हाथ में पुस्तक के लिए नंद मंदिर में आए। कौन? ज्योतिषी। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की, उन सब ने आशीर्वाद दिया, उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने सामग्री एकत्र करके पुत्रोत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन कराया। ज्योतिषियों ने सब मतलब भविष्य बताया इस बालक का कि क्या भविष्य है आगे का। फिर वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तन पान करते थे। वहां नंद के पुत्रोत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल सिंदूर और तांबूल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को चली गईं। केवल यशोदा रोहिणी और नंद यही उस घर में हर्षपूर्वक रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।